खुदाम यीशु मसीह के नाम में मैं तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूं और कादर मतलब खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज शाम खुदा का कलाम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सका और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं। आज का प्रोग्राम जो है ये भाई अख्तर भट्टी साहब ने, जो उनका ताल्लुक जर्मनी से है, उन्होंने आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। मेरी दुआ है कि उन्हें और उनके घराने को और बाकी जितने लोग इस खिदमत को सपोर्ट करते हैं उन सब के लिए मेरे दिल में बहुत शुक्रगुजारी है। तो मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की मुबारक हो और मैं बल्कि दिलेरी से कहता हूँ आप सबको ईस्टर मुबारक। और आज का जो मैसेज है वो भी ईस्टर के हवाले से होगा। बेशक आपने ईस्टर के दिन या ईस्टर से पहले भी और शायद मंडे को भी आपने किसी न किसी तौर से अपने पासबानों से, यानी पास्टर साहबान से या कहीं पर बिशप साहबान से या मीडिया के जरिए किसी न किसी तौर से आपने खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी, जो कि हैरान कुन है, जिसको इंसानी जहन तस्लीम नहीं करता और ये खुशखबरी आपने सुनी होगी। तो इसके बारे में बहुत सी मुख्तलिफ क्यास आराइयां भी लोगों ने की, गेस गुस भी लोगों ने लगाए कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ होगा, यह ऐसे है, ये ऐसे है, ये इसका नाम ईस्टर नहीं होना चाहिए था, इसको ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो इसका सबब दरअसल एक ही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान तो इस बात से खुशी मनाते हैं, खुदा बाप यहोवा कदूस एलोहिम एदोनाय अब्राहम इजहाक और यकूब का खुदा और तमाम के तमाम फरिश्ते जो आसमान पर पाक फरिश्ते हैं, क्रूबी और सरफिम, वो तो खुशी मनाते हैं। और जमीन पर जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं वो भी खुशी मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जहन हैं, कुछ ऐसे दिमाग हैं जो इस बात से खुश नहीं होते, बल्कि वो इस बात के लिए मुख्तलिफ ख्यालात पेश करते हैं। वो शायद ज्यादा इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, उनका ख्याल ऐसा है कि शायद खुदा को ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करना चाहिए था, शायद वो खुदा को मशवरा देना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियों के खत में उसका 11वां बाब उसकी 35, 36 और 37वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, बल्कि 33 आयत से, यानी पंजाबी जी 33 आयतों शुरू करके 33-35 आयत, वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा की हिकमत को, खुदा की बुद्धि को, खुदा के ख्यालों को किसने जाना है, या कौन उसका सलाहकार हुआ? क्या खुदा तू ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कर? खुदा किसी से सलाह नहीं लेता, वो तो कादर मुतलिक है, और उसकी जो बड़ी खूबियां हैं उसमें एक बड़ी खूबी यह भी है कि वो ऑल नोइंग गॉड है, वो सब कुछ जानता है। मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस साल पहले और मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस, जहां पर हमारे पास नंबर्स या गिनती खत्म हो जाती है, वो सब कुछ भी कादर मुतलक खुदा जानता है। खुदा को मालूम था कि एक दिन खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को क्रिसमस कहा जाएगा और वो 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, और खुदा को पता था कि खुदा यीशु मसीह के मरकर जी उठने का दिन जो है उसका नाम ईस्टर रख दिया जाएगा। पर बात यह नहीं है कि उस दिन का नाम क्या है, बात यह है कि उस दिन जो काम हुआ है, जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, ना तो वो उससे पहले कभी हुआ था, ना किसी के पास ऐसी कुदरत, ऐसा जलाल, ऐसा मसा, और ना किसी के पास ऐसी ताकत थी, और ना कभी हो सकती है, ना कभी होगी। और जो काम खुदा यीशु मसीह ने किया था, अब मसीह उसका नाम नहीं है। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, द अनॉइंटेड वन। और मसा किस मकसद के लिए मसीह हुआ था, और जिस मकसद के लिए मसीह मसा हुआ था, क्या उसने वो काम मुकम्मल किया? अब जो कुछ मसीह ने करना था, जो प्रोसेस उनके बारे में, जो भविष्यवाणियां, जो नबूवतें की गई थी, जो पेशीन गोइयां या पेश गोइयां जो की गई थी, क्या खुदावंद यीशु मसीह उस पर, क्या खुदावंद यीशु जो मसीह है उस पर पूरा उतरे? क्या उन्होंने वो सब कुछ किया? हां जी, उन्होंने सब कुछ किया। तो फिर यह भी तो लिखा था कि मसीह सलीब पर, यानी लानती मौत मरेगा, उसकी कब्र गुनाहगारों के दरमियान होगी, और कब्र उसी की होती है जो मरता है। और फिर यह भी लिखा है कि वो तीसरे दिन, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमा दिया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मैंने पिछले साल ईस्टर पर आपको बताया था कि 11 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा था, 11 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं गैर अकवाम के हवाले किया जाऊंगा और वो मुझे कत्ल करेंगे, और मैं तीसरे दिन, 3 दिन के बाद नहीं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। और फरिश्तों ने इस बात की गवाही दी जब सबत के अगले रोज, यहूदियों का सबत जो है वो सैटरडे को, यानी हफ्ते के दिन होता था, सबत के अगले रोज जब औरतें मसीह की कब्र पर आई, जब मुकद्दस पतरस कब्र पर आए, फरिश्तों ने कहा कि वो यहां नहीं है, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, जिंदा हुआ है। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, पहला करिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, यानी खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदावंद यीशु मसीह मर गया और किताब मुकद्दस यानी कलाम खुदा के मुताबिक दफन हुआ, और तीसरे नंबर पर कलाम मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। अब फरिश्तों ने कह दिया, रसूलों ने कह दिया, और मुकद्दस पतरस रसूल ने जब पहली मुनादी की, उन्होंने पहला प्रचार जब उन्होंने किया, जिसका जिक्र हम रसूलों के अमाल और उसके दूसरे बाब में उसकी 17 आयत से लेकर, यानी उसकी 17 आयत तो लेके जब उसी 42 आयत तक पढ़ने, तो वहां पर खास तौर पर 24वीं आयत जब हम पढ़े, बल्कि 22वीं, 23वीं, 24वीं आयत, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 22, 23 एंड स्पेशली वर्स 24, प्रेरितों के काम या रसूलों के कर्तव्य, उधर दूसरा अध्याय 22, 23, 24 आयत लिखा है कि तुमने तो मुकद्दस पतरस रसूल जो थे वो हजारों यहूदियों के सामने ये पहला प्रचार कर रहे थे, और ये प्रचार मसीह के आसमान पर जाने के 10 रोज के बाद किया गया था। बड़ी दिलेरी के साथ हजारों इसराइलियों के सामने, हजारों यहूदियों के सामने जो मुख्तलिफ मुल्कों से ईद मनाने के लिए वहां पर आए थे, उन हजारों के सामने एक शख्स ने, जो कमजोर से शख्स था, जो अपनी उम्र में बहुत जवान नहीं था, बहुत तगड़ा आदमी नहीं था, ना उसके साथ कोई वहां पर लश्कर खड़े थे जो उसकी हिफाजत करते, ना कोई तलवारें लेकर उसकी हिफाजत करने के लिए मामूर था, वो शख्स जो मछलियां पकड़ने वाला था बाय प्रोफेशन, अपने काम के लिहाज से मछलियां पकड़ने वाला शख्स था, ऐसी दिलेरी के साथ उसने हजारों यहूदियों को कहा कि तुमने तो उसको, मसीह को, सलीब पर चढ़ा दिया, उसे मार दिया, लेकिन मौत के पास ऐसी कुदरत, ऐसी ताकत नहीं थी कि वो उस पर कब्जा कर सकती, उसको कब्जे में रख सकती, बल्कि वो मर गया था और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और वो आज भी जिंदा है। ऐसी दिलेरी के साथ एक शख्स मसीह की गवाही दे रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से मसीह को देखा था जिंदा होने के बाद, एक दफा नहीं, बार बार देखा था, मसीह के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया था, मसीह को छुआ था उन्होंने, मसीह के साथ बातें की थी, मसीह यीशु ने उनके साथ कलाम किया था। खुदावन के नाम की तारीफ हो। ऐसी दिलेरी के साथ उन्होंने कलाम सुनाया। अब मेरी बात गौर से सुने, 11 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, एक दफा, यानी एक दफा आप कह सकते हैं 12वीं दफा खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील और उसका 12 बाब और उसकी 40वीं आयत में फरमाया, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 40, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह यूना 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात तक, 3 दिन और 3 रात तक आप कह सकते हैं मिट्टी के अंदर रहेगा, पर यहां पर खुदा यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? उसके 2 सबब थे। 1 सबब तो मैं बारहा बयान कर चुका हूं, बहुत दफा बता चुका हूं, सिखा चुका हूं कि दरअसल उसका मतलब यह था कि जिस तरह यूना 3 दिन और 3 रात तक मुसीबत की हालत में था, दुख की हालत में था, उसका जिस्म दुख सह रहा था, इसी तरह मेरा जिस्म भी दुख सहेगा 3 दिन और 3 रात, यानी थर्सडे को, जुमेरात को। थर्सडे को खुदा यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया, मार कुटाई शुरू हो गई, खुदा यीशु मसीह को मारना शुरू कर दिया, उसका खून निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ऑफ क्राइस्ट जीसस, खुदा यीशु मसीह का चेहरा जो धरती पर किसी भी जन्मे इंसान से ज्यादा खूबसूरत और मासूम था, और उसकी आंखें जो आग के शोलों की मानंद हैं। उस शाम उसने अपनी आंखों की आग जो थी, उसके चेहरे पर जो जलाल था, उसके अंदर जो जलाल था, उसके अंदर जो कुदरत थी, उसके अंदर जो इख्तियार था, उसके अंदर जो ताकत थी, उसने उतार कर उस शाम एक तरफ रख दिया था। जब उसने फरमा दिया था कि अब आप अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। दरअसल वो 2 बातें इसमें भी प्रूफ करना चाहते थे, एक प्रूफ करना चाहते थे, एक सिखाना चाहते थे। पहले नंबर पर शागिर्दों को साथ लेकर उन्होंने दुआ क्यों की? इसलिए ताकि शागिर्द सुने कि हमेशा हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है, चाहे जो भी हालात हों। और दूसरे नंबर पर वो बताना चाहते थे कि मैं सर से पांव तक इंसानी शक्ल इख्तियार करके इंसान ही बना हुआ हूं, जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत और 9वीं आयत आप जरूर पढ़िएगा। द लेटर टू फिलिपियन चैप्टर 2 वर्सेस 9, 10, 11 लिखा है कि वो इंसानी सूरत में जाहिर हुआ, इंसानी सूरत में जाहिर होकर उसने अपने आप को खाली कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत, लानती मौत उसने गवारा की। बेशक अगली आयात जो है 10वीं और 11वीं आयत भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इसलिए बाप ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से अल्लाह और अफजल और उत्तम और कुदरत वाला नाम है, जलाल से भरा हुआ नाम है। इसलिए कायनात का हर घुटना यीशु नाम के आगे झुक जाता है, आसमान का घुटना भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के आगे झुक जाता है। कायनात में जो चीज भी आती है, क्रूपियों, सरफीम, फरिश्तगान, सूरज और चांद और सितारों को लेकर के, गैलेक्सीज को लेकर के, जमीन को लेकर, मौत को लेकर, इबलीस, तरीकी की कुवतों, पताल और जहन्नम, बीमारियों, इंसानों, हर घुटना खुदा यीशु मसीह के नाम के आगे झुक जाता है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। ऐसा नाम इंसानी सूरत इख्तियार किए हुए था, जैसा कि कुलुसियों पहला बाब और उसकी 15वीं आयत के पहले हिस्से में लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है, जिस खुदा को कभी किसी ने देखा नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है योहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 18 आयत, तो गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1:18 लिखा है नो वन हैज एवर सीन गॉड, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, बेटा जो बाप की गोद में है उसने उसको जाहिर किया है। नो वन हैज एवर सीन गॉड, लिखा है वो अनदेखे खुदा की सूरत, ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, वहां देखे खुदा की सूरत है। प्रेज गॉड, लेकिन वो इंसानी सूरत इख्तियार करके जब धरती पर आ गया तो इंसान होते हुए, और ऐसा इंसान जिसने बचपन से कोई गलती नहीं की, ही नेवर मेड ए सिंगल मिस्टेक इन हिज चाइल्डहुड, इन हिज टीनेज, इन हिज यूथ। अब 33 साल यानी पंजाबी जी 33 साल की उम्र तक उन्होंने चैलेंज किया था कि तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित करेगा। योहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 40-45 आयत, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 8:40-45, तुम में से कौन मुझ पर या मुझ में गुनाह साबित करेगा। कोई गलती नहीं की थी। मां मुकद्दसा मरियम जिनके बातिन से उन्होंने जन्म लिया था, वो जानती थी ही इज द सन ऑफ गॉड। ये खुदा का बेटा है, ये रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है, ये मुजस्सम कलाम है, ये कलमा खुदा है। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको कभी खुदा यीशु मसीह को सिखाने की जरूरत पड़ी हो। एक दफा उन्होंने कोशिश की थी सिखाने की, मैं आपको बताता हूं, ये उस वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह को जब वो 12 साल के हो गए, जैसा लूका की इंजील और उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत में लिखा है, 42, 43, 44, 45, 46वीं आयत, द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 2:42-onward जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उसको हैकल में लेकर आए तो हैकल से मां बाप जो थे, जो दुनियावी तौर पर परवरिश करने वाला बाप मुकद्दस यूसुफ जो थे, मां मुकद्दस मरियम, ये चले गए वहां से। तो रास्ते में जाकर जब मां मुकद्दस मरियम का मेल मुकद्दस यूसुफ से हुआ, उन्होंने पूछा यीशु कहां है, वेयर इज जीसस। अभी किसी ने एतराज किया कि यीशु के नाम का कोई मतलब नहीं है, यानी जीसस के नाम का कोई मतलब नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मैं किसी को जज नहीं करता, लेकिन यह बात कहने वाला जो है वो दुनिया का सबसे हकीर तरीन बुद्धि रखने वाला शख्स है। यहोशुआ से ही यहोशुआ यीशु, यानी जब यूरोप में यह नाम आता है तो वहां पर यीशुस कहते हैं, और जब ऐसा ऐसा यहां इंग्लिश तक पहुंचता है यीशुस को जीसस कहते हैं, यानी जीसस कहते हैं। हाँ जी, कभी इस नाम को ईमान से पुकार मेरे भाई, तू जो गुमराह हो चुका है तुझे पता चल जाएगा यीशु नाम की कुदरत का, जीसस नाम की कुदरत का, खुदावन के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। अभी चंद दिन पहले मैं एक जगह पर गया था कलाम सुनाने के लिए, तो जब मैं दुआ कर रहा था तो एक प्यारी बहन बहुत तकलीफ में थी और वहां पर जो शैतानी कुवते थी वो मैनिफेस्ट हो गए, और जैसे वो मैनिफेस्ट हुई तो मैंने खुदा यीशु मसीह के नाम से, बल्कि एक नहीं बल्कि वहां पर दो औरतें थी, दोनों औरतों में जिनात आ गए, भूत प्रीत उनमें आ गए। मैंने कहा खुदा यीशु मसीह के नाम के आगे झुक जाओ। अब बिलीव करें, आप यकीन करें कि दोनों के सर झुक गए, सिजदे में चले गए, शैतानी कुवतें जो थी। मैंने कहा खुदा यीशु मसीह के नाम ही से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, लीव दीज बॉडीज। डीमंस जो थे वो इस तरह से छोड़कर भाग गए, क्योंकि उसका जीसस नेम, देर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस, देर इज ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस, द ग्लोरी ऑफ हेवन। अब खुदा यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते जब मां मुकदसा मरियम मुकदस यूसुफ वापस हैकल में आए तो उन्होंने कहा कि बेटा तूने हमें फिक्रमंद कर दिया था, तो तुझे मालूम ना था कि तू हमारे साथ चलता। खुदा यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मुझे अपने बाप के घर में होना ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, मां बाप को सिखाने की जरूरत नहीं थी खुदा यीशु मसीह को, क्योंकि वो बाद में राह नहीं बने जब उन्होंने कहा था योहन्ना की इंजील और उसका 14 बाब उसकी 6 है, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 कि आई एम द वे, आई एम द लाइफ, आई एम द ट्रूथ, राह और हक यानी सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। ऐसा नहीं हुआ कि बपतिस्मा लेने के बाद वो राह बना, वो जब पैदा हुए थे उसी वक्त से वो राह थे, उसी वक्त से वो सच्चाई थे, उसी वक्त से वो खुद ही जिंदगी थे। अजीज भानो भाइयों, बल्कि कलाम में तो ऐसा लिखा है योहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 4 और 5 आयत लिखा है उसमें जिंदगी थी, और जितनी कायनात पैदा हुई है, जितनी जिंदगी हम कायनात के अंदर देखते हैं, लिखा वो जिंदगी मसीह यीशु की वजह से, कलमे खुदा की वजह से, कलामे खुदा की वजह से, खुदा की वजह से कायनात के अंदर जिंदगी है। और लिखा वो जिंदगी आदमियों का नूर बनी। खुदा यीशु मसीह ऐसे मासूम चेहरे के साथ इस जमीन पर इंसानी शक्ल इख्तियार करके आए थे। कभी कोई मिस्टेक, कभी कोई गलती नहीं की थी, हो ही नहीं सकती थी। उसको अगर मौत का सामना करना पड़े, और ऐसी मौत का जहां पर मारने से पहले ही हजारों दफा मार दिया जाए, थप्पड़ों के साथ, घोंसों के साथ, मुक्कों के साथ, दाढ़ी को खींचने, बालों को खींचने के वसीले से, और घोंसे और थप्पड़ मार मार कर चेहरे का ये हाल कर दिया कि आंखें ही ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, और ऐसे जालिम सिपाही थे रोमी सिपाही, ऐसा जुल्म ढा दिया गया, वो जानते थे कि ये सब कुछ होगा, और सबसे तकलीफ दे और सबसे शर्मनाक मौत, लानती मौत का सामना था। इसलिए इंसान होते हुए उन्होंने ये दुआ की थी اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پر پھر بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ تو جب مرضی پوری ہوئی تو اپنا یہ کہہ دیا تیری مرضی پوری ہو، اپنا جلال اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، اپنی قدرت کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا اور مار کھاتے گئے، مار کھاتے گئے، لہو بہاتے گئے، خون بہاتے گئے۔ اور وہ خون جو بہا وہ مجھ پاپی اور گنہگار کے لیے، اور آپ جتنے اس کلام کو سن رہے ہیں، چاہے کوئی ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، دنیا کے ہر فرد کے لیے، چاہے کوئی نبی ہے، پیغمبر ہے، گرو ہے، یا عام انسان ہے، بادشاہ ہے، کمزور ہے، دولت مند ہے، فقیر ہے، غریب ہے، دنیا کے ہر شخص کی نجات کے لیے، مکتی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہی خون بہایا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیو، اور جو بھی ایمان لاتا ہے اس خون سے وہ دھل جاتا ہے اور اس کو ایسا بنا دیا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو، پریز گاڈ۔ اور ایسی ذلت والی موت ان کو مارا گیا، اس لیے انہوں نے دعا کی تھی، یہ وجہ تھی۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی یہ دعا پھر کیوں کی تھی؟ سی انسانی صورت اختیار کی تھی نا، بلکہ انہوں نے کہا تھا میری جان اب گھبراتی ہے، مائی لورڈ۔ متی کی انجیل اور اس کا 26 باب، اس کی 35, 36, 37, 38 آئے جب ہم پڑھتے ہیں، خدا ہم یسوع مسیح نے کہا میری جان اب گھبراتی ہے کیونکہ موت کا سا سامنا ہے۔ اب 12ویں دفعہ خدا ہم یسوع مسیح نے 3 دن اور 3 رات کی جو بات کی تھی وہ مرنے کے بعد کی نہیں تھی، وہ تو دکھ سہنے کی بات تھی۔ اور 12ویں دفعہ ایک بات میں اور بتاتا ہوں آپ کو، 11 شاگرد جو تھے وہ تو خداوند یسوع مسیح کے دکھ سہنے کے وقت موجود تھے، اس کے مرنے کے وقت بھی زمین پر زندہ تھے، خداوند یسوع مسیح کے مر کر زندہ ہونے کے بعد آسمان پر جانے کے بعد، پینتیکوست کے دن جب ہولی اسپرٹ، جب پوتر آتما پاگرو جب نازل ہوا تو وہ موجود تھے۔ انہوں نے 11 نے منادی کی، 12ویں جو تھا اس بات کو، اس بھید کو سمجھ نہیں سکا۔ تو جو اس 12ویں کی طرح ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بائبل میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پترس تو مجھے خدا کا بیٹا المسیح کہتا ہے، گوشت اور خون انسان سے یہ بات نہیں ہو سکتی، عام انسان یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا، بلکہ میرا باپ جو آسمان پر ہے اس نے تجھ پر یہ بات ظاہر کی ہے، ریولیشن، مکاشوا، پرکاش دیا گیا تجھے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں اور میں مسیح ہوں۔ بلڈ اینڈ فلیش cannot say this۔ جب تک اس کو ہولی اسپرٹ چھو نہ دے، اور جب پاگرو چھو دیتا ہے تو پھر ہمارے اندر کی روح جب زندہ ہوتی ہے، ہم مان لیتے ہیں تو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے، تو ہی زندگی کا مالک ہے۔ خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ اب بات یہ تھی کہ خدا میں یسوع مسیح مر گئے صلیب پر، اور جب اس نے جان دی تو بائبل میں لکھا ہے کہ دنیا کے جو سردار ہیں पहला ग्रंथियों उसका दूसरा बाब उसकी 6, 7, 8, 9, 10 आयत लिखा है कि जहान के सरदार जो है, बल्कि पांचवी आयत से पढ़े, 1 Corinthians 2:5-10 लिखा है, अगर इस जहान के सरदार इस बात को समझते तो वो जिंदगी के मालिक को मसलूब ना करते, स्लीप पर ना चढ़ाते। वो ना चढ़ाते स्लीप पर, बट दे डिडंट अंडरस्टैंड इट बिकॉज दे डिडंट हैव द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट। डू यू हैव द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट? डू यू हैव द रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट? क्या आपके पास मुकाशफा है कि खुदा यीशु मसीह कौन है? क्या आप पर यह भेद खुल चुका है कि यीशु कौन है? खुदावंद के नाम की तारीफ हो। यह तो बात हो गई खुदावंद यीशु मसीह के मरने तक की। कुछ लोगों का ख्याल है कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब थे, इंडिया में पैदा हुए, उन्होंने कह दिया कि जी मैं मसीह हूं। लोगों ने कहा भाई साहब वो तो मरकर तीसरे दिन जिंदा हुए थे, फिर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो मरकर जिंदा नहीं हुए थे, बल्कि उनके शागिर्द उनको सलीब से उतार कर कहीं और ले गए थे, उनके जख्म जुख्म ठीक कर दिए थे, फिर वो कश्मीर आ गए थे प्रचार करने के लिए और उनका मकबरा वहां पर यूज आसफ के नाम पर अभी भी है। मिर्जा साहब क्या बातें करते हैं, आप तो वैसे ही काबले रहम हैं और अब तो आप पर रहम करना भी फजूल है क्योंकि आप मसीह को क्या जानेंगे, क्योंकि आपने तो खुद ही कह दिया मैं खुद ही मसीह हूं। यही सबसे बड़ा गुनाह था आपका कि आपने कहा कि मैं ही खुद ही मसीह हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों से, मत्ती की इंजील और उसका 24:3-9 आयत, खुदावंद यीशु मसीह, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू 24:3-9, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जाने के बाद, मेरी दूसरी आमद से पहले बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, एंड मिर्जा गुलाम अहमद वॉज वन ऑफ देम। ये उनमें से एक था जिसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो स्लीप पर चढ़ाया तो गया था। हालांकि जो हमारे इस्लामी भाई हैं, जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका ईमान, उनकी समझ या उनकी तालीम के मुताबिक खुदा यीशु मसीह को स्लीप पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि उनके शागिर्द की एक ही शक्ल उनकी तरफ बदल गई थी, उनके ईमान का, उनके ख्याल के मुताबिक वो उनका शागिर्द था, और एक और तरह से उनका एक ईमान है या ख्याल है कि शायद वो सूबेदार जो अरेस्ट करने के लिए आया था खुदा यीशु मसीह को, उसको स्लीप पर चढ़ा दिया गया था, यीशु मसीह वहीं से जिंदा आसमान पर चले गए थे। हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ईमान को हम बुरा नहीं कहते, प्लीज डोंट माइंड, अगर आप मुसलमान बहन भाई सुन रहे हैं मैं उसमें बुराई नहीं कर रहा आपकी, लेकिन जो आपका ख्याल जैसा हमने सुना है बचपन से अपने मुस्लिम फ्रेंड्स से, बहनों भाइयों से, तो वो आपको मैं वैसे बयान कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके ईमान की भी, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर इंडीड हकीकत में वो मर गया था, क्योंकि अगर वो ना मरता तो वो मसीह ना होता, क्योंकि मसीह का सबसे बड़ा पर्पस, मसीह का पर्पस ही सिर्फ एक था, उनका मकसद ही सिर्फ एक था, ताकि वो बनीनो इंसान को, इंसान की औलाद को, आदम के बच्चों को, ताकि गुनाह की गुलामी से, मौत की गुलामी से छुटकारा दे, क्योंकि कोई अपने आप से मौत से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, इब्रानियों का खत उसका दूसरा बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है उसकी 12-13-14 आयत में, 15-16 आयत तक, लिखा है हिब्रूज चैप्टर 2 वर्सेस, स्पेशली वर्सेस 14 और 15, खासतौर पर 14 और 15, लिखा है जिस तरह से लड़के खून और गोश्त में शामिल थे वो खुद भी उनकी मानिंद गोश्त और खून में शामिल हो गया, यानी वो खुद भी उनकी मानिंद इंसान बन गया, ताकि उनको उसके कब्जे से, यानी शैतान इबलीस जो मौत के वसीले से उनको डर में रखे हुए था, शैतान मौत के वसीले से हर इंसान पर राज करता था, हर इंसान को उसने मौत के डर में रखा हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह भी इस धरती पर जब आए, शैतान ने कोशिश की 3 दफा उसे हलाक करने की, इससे पहले भी सलीब के, सलीब पर जाने से पहले भी उसने 3 दफा कोशिश की थी। जब मसीह की पैदाइश हुई तो कलाम में लिखा है 2 साल की उम्र के से छोटे बच्चे थे जो सबको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जब हम मरकुस की इंजील पढ़ते हैं, द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 to 41, चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 5, मरकुस की इंजील और उसका 4वां बाब और उसकी 35 से 41, यानी पंजाबी 41 आए तो फिर 5वां बाब तो पहलियां 5 आए थे। लिखा है खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा आओ हम पार चलें। वो जानते थे कि पार क्या है, झील के परली तरफ क्या है, और लिखा है कि खुद किश्ती में जाकर सो गए और एक जबरदस्त तूफान आ गया, यहां तक कि कश्ती जो थी वो पानी से भरी जाती थी, और उसमें बड़े एक्सपर्ट, बड़े तजर्बाकार तूफानों को जिन्होंने देखा था अपनी उम्र भर, मछलियां पकड़ने वाले, वो जानते थे कश्ती को खाली कैसे करना है इस हालत में, लेकिन वो मजबूर हो गए क्योंकि तूफान इस कदर तेज और इस तरह इस कदर जोरावर था कि उन्होंने जाकर मसीह को जल्दी से उठाया। उन्होंने कहा है खुदावन क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं, हम हलाक हो रहे हैं, हम मर रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह जानते थे कि ये तूफान लाने वाला कौन है, क्योंकि जब हम 5वां बाब पढ़ते हैं मरकुस की इंजील 5 बाब चैप्टर 5 द गॉस्पल ऑफ मार्क वर्सेस 1 to 5, 5वां बाब उसकी 1 पांच आए थे, लिखा है कि जब वो ग्रासीनियों के इलाके में दाखिल हुआ तो वहां एक शख्स था जो कब्रों में रहता था, उसको बार बार बेड़ियों और जंजीरों से जकड़ा गया था, लेकिन उसमें जो बदरूहों का, दुष्ट आत्माओं का, जिन्ना भूतों का जड़ा कब्जा सी, वो बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था, जंजीरों को तोड़ देता था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। खुदावंद यीशु मसीह उसको आजाद कराने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए, उसको रिहाई बख्शने के लिए वहां पर जब जा रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कश्ती में लिखा कि जब वो सो गए तो उन्हीं तारिकी की कुवतों ने, बदरोहों ने, शैतानी कुवतों ने, उन्होंने देखा कि ये इस शख्स को आजाद करवाने के लिए आ रहा है। उसने कहा इसको कश्ती उल्टा दो ताकि झील के अंदर डूब कर शागिर्दों समेत खत्म हो जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कौन मार सकता है। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 18 आयत में, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 18, उन्होंने कहा कि कोई मुझसे मेरी जान लेता नहीं बल्कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। यह अथॉरिटी मेरे पास है कि मैं अपनी जान खुद ही दे दूं गुनाहगारों के लिए, और मेरे पास इख्तियार है उसे वापस ले लूं। खुदा उनके नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। दिस वॉज थर्ड टाइम, और दूसरा वक्त वो था जब पहली दफा खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील 4वां बाब اور اس کی 16 سے 18 آیت تک، بلکہ 16 سے 25 آیت تک جب ہم پڑھیں، دا گاسپل آف لوک چیپٹر 4 verses 16 to 25 جب ہم پڑھیں، تو وہاں پر لکھا ہے خدا یسوع مسیح اپنے دستور کے موافق عبادت گاہ میں گئے، وہاں ان کو ایک سکرول دیا گیا، انہوں نے کھولا جہاں پر یسایا کی کتاب میں لکھا ہوا تھا 61 باب اور اس کی 1, 2, 3, 4 آیت میں کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور مجھے مسا کیا گیا، یعنی میں مسیح ہوں. جیسے ہی خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ کلام آج تمہارے سامنے پورا ہوا، یعنی میں مسیح ہوں، شیطان نے لوگوں کو ابھارا اور لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے تاکہ پہاڑی پر سے نیچے گرا کر مار دیں، قتل کر دیں. پر خدا یسوع مسیح ایسے لوگوں کو اپنے ازل سے جو پروگرام تھا اس کے مطابق لوگوں کو ٹرین کرنا چاہتے تھے، تعلیم دینا چاہتے تھے، ان کو بتانا چاہتے تھے، آزاد کرنا چاہتے تھے. اس لیے بھی وقت نہیں آیا تھا، مگر جب وقت آ گیا تو خدا یسوع مسیح نے ایک چیلنج کر دیا. اب چیلنج کیا تھا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے جس میں تاریکی کا اختیار ہے، تاریکی کو، اندھیرے کی قوتوں کو، شیطان ابلیس کو اختیار دے دیا گیا ہے، موت کو اختیار دے دیا گیا ہے، پتال اور جہنم کو اختیار دیا گیا ہے. کر لو جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو، خدا کے مسیح یسوع پر جو ظلم ڈھانا چاہتے ہو تم ڈھالو، تم مجھ پر موت لے کر آنا چاہتے ہو لے آؤ. خدا یسوع مسیح نے چیلنج کر دیا. جیسے ہم جو دیسی لوگ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں نا، بھی جو کرنا کر لے، خدا یسوع مسیح نے یہ چیلنج جو تھا، جو باپ نے عدن کے باغ میں چیلنج دیا تھا، پیدائش کی کتاب یعنی اتپتی ہندی اور پنجابی میں اس کا 3rd باب، اس کی 14, 15, 16, 17 آیت، خاص طور پر 15-16 آیت میں ایسا لکھا ہے، دا بک آف جینیسس چیپٹر 3 verses 14, 15, 16, 17، خدا نے کہا تھا سانپ کو، اس اژدہا کو، اس شیطان ابلیس کو کہا تھا کہ تیرے سر کو جو عورت سے پیدا ہوگا، عورت کی نسل ہوگا، مرد کی نسل نہیں ہوگا، مرد سے پیدا نہیں ہوگا، مرد کے ملاب سے پیدا نہیں ہوگا، وہی صرف اپنی ایڑی سے تیرے سر کو کچلے گا. خدا یسوع مسیح اس چیلنج کو لے کر صلیب پر چلے گئے، اپنا خون بہا دیا اور آخر میں کہہ دیا تمام ہوا. اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. لکھا کہ پھر سر جھکا کر جان دے دی. لیکن یہاں پر ہر انسان کی سٹوری آ کر ختم ہو جاتی ہے، مائی گاڈ، مائی گاڈ، مائی گاڈ، مائی گاڈ. یہاں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے اس کتاب مقدس کے اندر، بائبل کے اندر، توریت کے اندر، نبیوں کے صحیفوں کے اندر، زبوروں کے اندر، بے شمار نبیوں کا ذکر ہے، بے شمار انبیاء کرام کا، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر کا ذکر ہے یہاں پر، اور ان کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے. نبیوں کے باپ جو تھے، ابراہم، اسحاق اور یعقوب، لکھا ہے ابراہم پھر مر گیا، खुदा ने उसके बेटे के साथ कलाम किया। इसहाक मर गया, खुदा ने याकूब के साथ कलाम किया। सब के सब नबी मर गए, स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन यह स्टोरी जो है मसीह की स्टोरी, दरअसल शुरू ही उसकी मौत के बाद होती है। पहला पत्रस 3:18-19 और 20 आयत में लिखा है कि जिस्म के एतबार से तो वो मारा गया, मगर रूह के एतबार से वो जिंदा हुआ। इसी में यानी रूह में उसने जाकर, यानी जब उसका बदन मारकर सलीब पर से उतारकर कब्र के अंदर रख दिया गया, तो इसी में यानी रूह में वो पाताल में चला गया। पाताल में उन कैदी रूहों में मुनादी की, अब्राहम जो वहां पर मुंतजर था, ईमानदारों को लेकर, बिलीवर्स को साथ लेकर, विश्वासी सब के सब जो थे उसकी गोद में थे, उसके बच्चे उसकी गोद में थे, इसहाक और याकूब के साथ, दाऊद बादशाह के साथ, सुलेमान के साथ और यर्मिया के साथ, यशायाह के साथ, मलाकी के साथ, हिजकिय्याह के साथ, दानियल के साथ, ये सब के सब अंबिया काम वहां पर मौजूद थे। और उसके साथ वो नाफरमान रूहे भी वहां पर मौजूद थी जो नूह के जमाने से, जिन्होंने नाफरमानी की थी। खुदा यीशु मसीह ने उनको जाकर छुड़ाया वहां से। और इफिसियों का खत उसका 4:8-9 आयत में लिखा है कि आलम बाला पर कोई नहीं चढ़ा, यानी आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, बल्कि लिखा है वो जमीन के नीचे के इलाके में भी उतरा था। और लिखा है कि वहां से वो सब कैदी रूहों को अपने साथ आसमान पर ले गया और आदमियों को वहां ले जाकर इनाम दिया। अजीज भानु भाई, आपका इनाम भी बाकी है और ये सेकंड कमिंग के बाद होगा। लिखा मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, राबा सांदा राबा राबा रा, हो तेरी तारीफ हो। मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, मैं तेरा नाम किताबे हयात में लिखूंगा, कोई उसे मिटा नहीं सकेगा। मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, मैं तुम्हें एक सफेद पत्थर दूंगा। मेरी बात सुने आप जितने भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आपके साथ 32,000 से ज्यादा वादे बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। आसमान के वादे भी मौजूद हैं, जमीन के वादे भी मौजूद हैं। जबकि हम जमीन पर जिंदा हैं, वादे मौजूद हैं, हमारे मरने के बाद भी वादे मौजूद हैं। और क़यामत जब होगी, जब खुदा यीशु मसीह आएंगे, उस वक्त के वादे मौजूद हैं, बल्कि जब उसके बाद हमें आसमान पर ले जाया जाएगा, वहां के वादे मौजूद हैं। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। इसलिए तो उसने फरमाया यूहन्ना की इंजील और उसका 14 और उसकी 1, 2 और 3 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। क्योंकि 10 और उसकी 30वीं आयत में, chapter 10:30 10:30 आयत में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था कि बाप और मैं एक हैं। उन्होंने यह भी कहा यूहन्ना की इंजील उसका 14 और उसकी 6, उन्होंने कहा कि राह और जिंदगी मैं हूं। 9 आयत में उन्होंने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उन्होंने कहा कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि आकर फिर तुम्हें अपने साथ ले लूं। एंड ही इज कमिंग सून। उन्होंने खुद फरमाया है مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 22 باب اور اس کی 12 آیت میں دا بک آف ریولیشن پرکاشت واقعہ یا پرکاش دی پوتھی ہندی پنجابی چ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 22 ورس 12 22 باب اور اس کی 12 آیت میں انہوں نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. لیکن یہ کب کہا؟ مرنے سے پہلے کہا؟ نہیں, مرنے کے بعد قیدی روحوں کو آزاد کیا. اور آپ اس کی جھلک دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ 27 باب متی کی انجیل اس کا 50, 51 اور 52 آیت پڑھیں. دا گاسپل آف میتھیو چیپٹر 27 verses 50, 51 and 52 لکھا ہے کہ جب اس نے بڑی آواز سے چلا کر جان دی, چٹانیں تڑک گئیں, طوفان آ گیا, طوفان برپا ہو گیا, زمین بھی رو پڑی, یہ کیا ہو گیا؟ لکھا ہے بہت سے قبریں کھل گئیں, مقدسوں کے بدن نکلے قبروں میں سے, لوگوں نے دیکھا ان کو. یہ مقدس کون تھے جن کو موت کے قبضے میں رکھا گیا تھا؟ دیور ویٹنگ فار مسایا ٹو کم. وہ مسیح کے منتظر تھے جن کو مسیح نے روح میں جان دیتے ہی روح میں جا کر آزاد کروا دیا. خدا ان کے نام کی تعریف ہو, ہالیلویا. تمہارا دل نہ گھبرائے, 365 دفعہ بائبل میں لکھا ہے تو مت ڈر, خوف نہ کر, تیرا دل نہ گھبرائے. مرنے کے بعد, زندہ ہونے کے بعد, مکاشوا کی کتاب پرکاشت واقعہ پرکاش دی پوتھی بک آف ریولیشن مکاشوا پہلا باب 17 اور 18 آیت میں خدا یسوع مسیح نے یوحنا کو اپنا بھرپور مکاشوا, پورا مکاشوا دیا, پورا پرکاشن دیتا. ہی گیو ہم فل ریولیشن آف ہم سیلف. اور اس نے آ کر کہا یوحنا مت ڈر, میں زندہ ہوں, میں مر گیا تھا اور دیکھ عبد العباد یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہوں گا. اس لیے ایماندار بلیور کرسچن پلیز ڈو ناٹ بی افریڈ, ڈرے مت, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا اور میرا ریڈیمر مر کر زندہ ہو گیا ہے. اس کی قبر آج بھی یروشلم میں خالی ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے وہ یہاں نہیں ہے, اپنے کہنے کے مطابق وہ مردہ میں سے جی اٹھا ہے. خداوند کے نام کی تعریف ہو, پریز گاڈ. آسمان کے مقدس فرشتے نے یہ کلام کیا تھا, وہ یہاں نہیں ہے اپنے کہنے کے مطابق. اکارڈنگ ٹو ہز اون ورڈز ہی از ریزن فروم دا ڈیڈ. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایمان رکھیں. اونلی بلیو, اونلی بلیو. اور آج جب میں یہ منادی کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں بہت سے بدن شفا پا گئے ہیں, بہت سے گھروں سے بدروہیں بھاگ گئی ہیں خدا یسوع مسیح کے نام سے, بہت سے لوگ آزاد ہو رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو آزادی اور شفا مل رہی, برکت مل گئی ہے. اور برکت سدا ملتی رہے گی کیونکہ اس نے گناہ پر, موت پر, قبر پر, شیطان پر, اس نے پادان اور جہنم پر, تاریکی کی قوتوں پر اس نے فتح حاصل کی ہے. اور مر کر اپنے کلام, اپنے کہنے کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا. عزیز بہن بھائی, خداوند کے نام کی تعریف ہو. آج سے سر جھکا کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, شیطان کا بدروہوں کا سامنا کریں اور اسے بتائیں کہ میرا چھڑانے والا زندہ ہے. خداوند کے نام کی تعریف ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آپ کے ساتھ میری ملاقات یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے, ایم اے ٹی وی کے ذریعے, نیکسٹ ट्यूसडे को होगी। तब तक याद रखें, यीशु मसीह की कब्र खाली है। गॉड ब्लेस यू।